हरे कृष्णा। तो नारद जी अर्जुन से कह रहे हैं, अब आगे की कथा सुनो। जब उस बालक ने गहन वन में तुम्हारे सिखा, मतलब कौन अर्जुन के सिखा, कौन श्री कृष्ण का स्मरण किया, तब चांडालों ने उसका वध नहीं किया। आपको याद है ना कि दुष्ट बुद्धि ने इन चांडालों को इस काम में लगाया था, इस बालक का वध करने के लिए। नारद कह रहे हैं कि हे पृथानंदन, बालक तरुण स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि वह रात दिन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो निश्चित रूप से संकट से मुक्त हो जाता है। इसमें देर नहीं है, ये बहुत जरूरी है ये समझना। आज पूरे संसार में सब लोग अनेक प्रकार का क्लेश पा रहे हैं, लेकिन उनको इस क्लेश से मुक्त कैसे होना है उसका उपाय नहीं पता है। क्लेश से मुक्त सब होना चाहते हैं, लेकिन कैसे मुक्त होना है वो नहीं पता है। तो बृहद नारद पुराण में बताया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्यो नित्यो नास्यो गतिरन्यता। तो ये उपाय बहुत सरल है, सिर्फ कृष्ण का नाम स्मरण करने से मनुष्य सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। तो उस बालक की छठी उंगली कट गई थी जिसकी पीड़ा से वो व्याकुल था, उस घाव से निकलते हुए खून से वह सन गया था, अतः जोर जोर से रोने लगा और उसकी चिल्लाहट को सुनकर हरिणिया भी मोहित हो गई। बच्चे को इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से रोने लगा, रोते हुए कहने लगा, देव देवेश्वर श्री कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, नाथ आप तो कृपा के समुद्र हैं, अतः मुझे इस संकट से छुड़ाइए, सर्वव्यापी स्वामी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो जब बच्चा इस प्रकार से कह रहा था तो वे हरिणिया उसके निकट जाकर धीरे धीरे उसके पैर को चाटने लगी। बच्चे के पैर में घाव आ रहा था ना, जो उंगली काटने की वजह से घाव हुआ था उसमें रक्त बह रहा था, उसको और ये हरिणिया मन ही मन इस प्रकार से तर्क करने लगी, लगता है हमारे पति हरिण हमारे साथ रति क्रीड़ा करने की इच्छा से अपने स्वामी को छोड़कर गहन वन में प्रविष्ट हो गए हैं, इसी कारण आज ये उनसे रहित हो गए हैं। मुख की कांति से तो ये प्रत्यक्ष ही चंद्रमा है, इनके नेत्रों से अश्रुकण जल रहा है, अपने वाहन से हीन हो जाने के कारण ये स्वामी आकाश से भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार से ये हरिणिया उस निर्जन में उस बालक को प्रसन्न करती हुई सी उसके पैर को चाटने लगी। और क्योंकि बच्चा रो रहा था तो उसके दुख से पीड़ित होकर सारे पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उस पर छाया करने लगे। इतना करुण क्रंदन कर रहा था ये बच्चा कि पक्षियों को दया आ गई और उनसे बच्चे के दुख से ही पीड़ित होकर वो अपने पंख फैलाने लगी। झुंड के झुंड उलूक, आप जानते उलूक मतलब उल्लू, अपने घोंसलों में बैठे ही रह गए, वे उसके दुख से दुखी होने के कारण बाहर निकले ही नहीं। उस बालक के दुख से शोक विवल हुए कबूतर कठोर बोली बोलने लगे और पत्थर कणों से अपने पेट भरने लगे, पत्थर कण ही खाने लगे। इसी अवसर पर उस देश का अधिपति कुलिंद, जो उस वन प्रदेश की देखभाल करने के लिए उस गहन वन में आया था, वहां आ पहुंचा। तत्पश्चात उसने जिसके मुख पर भरते हुए अश्रु बिंदुओं की धारियां पड़ी हुई थी और जो राम गोविंद रमापति आदि भगवान नामों का जप कर रहा था, उस बालक को देखा। अरे बालक रोते हुए क्या कह रहा था, त्राही माम करुणा सिंधु द्रोप तथा यथापुरा किमुपेक्षसि माम बालम मनात्रा विवर्जितम। करुणा सिंधु, जैसे पहले आपने द्रौपदी को संकट से उबारा था, इसी तरह आज मेरी भी रक्षा कीजिए, भगवान में मातृहीन बालक वन में छोड़ दिया गया हूं, ऐसी दशा में आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। यद्युपेक्षसि माम नाथ तवे वही तदा त्रपा त्वद्भक्ता नावसिदंती श्रुतमेतन मया विभो। नाथ, यदि आप मुझ पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी दशा में आपको ही लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि विभो मैंने ऐसा सुन रखा है कि आपके भक्तों को कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि शुद्धा भक्ति का पहला लक्षण है कि वो क्लेशक नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के सिद्धांत का पालन करता है तो तुरंत उसका क्लेश का शमन हो जाता है। बालक की बात सुनकर कुलिंद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इतना छोटा सा बालक इतने ज्ञान की बात कर, इतने वेदांत की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो वेदांत का सर्वोत्तम सिद्धांत है ये कृष्ण भक्ति। तो ये कुलिंद ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, वह तुरंत ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और फिर वह बुद्धिमान नरेश उस बालक के आंसू पोंछ कर सांत्वना देते हुए उससे पूछने लगा, वो पूछ रहे कि बच्चे तेरे पिता का नाम क्या है, तेरी माता कौन है, तेरे सुहृद बंधु आदि कुटुंबीजन कहां है, तो किस लिए इस निर्जन वन में आ पड़ा है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। बालक ने कहा, महाराज मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण है। देखिए हर एक जो वैष्णव है अपनी पहचान इसी प्रकार से देता है। कई बार कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको अपना गोत्र नहीं पता होता, यदि गोत्र पता भी है तो भी सभी जो वैष्णव है भगवान कृष्ण के भक्त वो अपने आप को किस गोत्र के साथ पहचान करते हैं, बोले हम लोग अच्युत गोत्र के हैं, अच्युत कृष्ण का एक नाम है। तो बालक ने कहा कि मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण ही है, उन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, परंतु आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसी कारण मैं रो रहा हूं। तो चंद्रहास ऐसा नहीं कह रहा है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने मेरे माता पिता जो श्री कृष्ण है उनका दर्शन नहीं हो रहा है। जैमिनी कह रहे जन्मेजय, बालक की यह बात सुनकर राजा कुलिंद विचार करने लगा कि मैं पुत्रहीन हूं। तो कुलिंद समझ गए कि यह बच्चा जो है नाथ है एक्चुअली, और मैं पुत्रहीन हूं, अतः यदि विष्णु भक्त शिशु मेरा पुत्र हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये जो शिशु है, जो बच्चा जो है, वो तो विष्णु भक्त है, वैष्णव है, तो इसको ही मैं पुत्र रूप में स्वीकार कर लेता हूं। मन ही मन ऐसा कहकर राजा कुलिंद ने उस बालक को हृदय से लगाकर उसे अपने घोड़े की पीठ पर बैठा लिया और फिर स्वयं भी उसी घोड़े पर चढ़कर वह अपने परिजनों के साथ अपनी चंदनावती नगरी की ओर चला। उस शूद्र के कारण बहुत बहुत हर्ष हो रहा था, हर्ष का अतिरिक्त हो रहा था कुलिंद को, उसकी भुजाएं फटक रही थी। मार्ग में जाते हुए वह कहने लगा कि मेरी जो संपत्ति अभी तक पुत्र ना होने के कारण पाप स्वरूप थी, वह आज पुण्यदायिनी हो गई। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि यदि किसी को कोई संतान नहीं है उसका अर्थ यह है कि वो उसने पिछले जन्म में कुछ घोर पाप किया है, ऐसा बताया जाता है। तो अभी तक कुलिंद कह रहे कि मेरी जो संपत्ति थी वो संपत्ति जो थी वो पाप स्वरूप थी, लेकिन अभी आज पुण्यदायिनी हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे चंद्रहास जैसा एक साधारण पुत्र नहीं वैष्णव पुत्र प्राप्त हुआ। तो पिता सिर्फ जन्म देने वाला नहीं होता है, जो पालन करने वाला जो पिता है वो भी पिता है, इनफैक्ट वो बड़ा पिता है। ये बात शकुंतला के उपाख्यान में बताई गई है, क्योंकि शकुंतला का जो जन्म हुआ था वो विश्वामित्र और मेनका के मिलन से हुआ था, लेकिन उसका पालन तो कर्व ऋषि ने ही किया था। तो उस उपाख्यान में ये बात आती है कि जन्म देने वाला तो वो तो जनक पिता है ही, लेकिन उससे बड़ा पिता पालने वाला होता है। तो कुलिंद ने इसको अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा कहते हुए राजा कुलिंद अपनी चंदनावती नगरी में जा पहुंचा और उस पुत्र को साथ लिए हुए उसने अपने भवन में प्रवेश किया। तो वहां उसने ये जो पुत्र जो प्राप्त हुआ वो अपनी उनकी जो बुद्धिमती रानी जो थी उनकी गोद में डाल दिया। तब रानी बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई, कहने लगी मुझे केवल पुत्र का ही अभाव था, अब इस पुत्र के प्राप्त होने से मैं शोचनीय नहीं रह गई, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, इसने मुझे पवित्र कर दिया, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो नारद जी आगे कह रहे हैं अर्जुन से कि इसके बाद बुद्धिमान राजा कुलिंद ने पुत्रोत्सव मनाने का आयोजन किया। उस उत्सव में उसने वेदवित्ता स्नातक ब्राह्मणों की पूजा की। उस उस अवसर पर ज्योतिषी हर्ष में भरकर कहने लगे, हे कुलिंद, तुम्हारे ये जो शोभाशाली बालक है वो बहुत से शास्त्रों का श्रवण करने वाला होगा। इतना ही नहीं, ये महान भगवान विष्णु का महान भक्त होगा और महान यशस्वी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये भगवान विष्णु का भक्त होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समय ये हंसेगा उस समय उस इसके सुंदर एवं शुद्ध मुख से चंद्रमा गिरते हुए से प्रतीत होंगे, इसलिए यह चंद्रहास नाम से विख्यात पृथ्वीपति होगा। देखिए, चंद्रहास की कथा हम लोग सुन रहे हैं, तो चंद्रहास नाम कैसे हुआ? तो ज्योतिष इनको बता रहे हैं कि जब ये हंसेगा तो इसके सुंदर एवं शुद्ध मुख से जैसे चंद्रमा गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होगा, इसलिए इसका नाम चंद्रहास होगा। तब से वह चंद्रहास प्रतिदिन कुलिंद की आशा के साथ साथ चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तो कुलिंद अपने घर में उनका पालन पोषण करने लगे। जब से चंद्रहास उस देश में आया तब से वहां की भूमि बिना जोते ही अन्न उत्पन्न करने लगी। भूमि को जोतना नहीं पड़ता था, खेती के बिना ही अन्न उत्पन्न होने लगा। प्रजाएं आनंद में मग्न रहने लगी और गौवें हृष्ट पुष्ट होने के कारण मन को आनंद देने वाली हो गई। वे घड़े घड़े भर दूध देने लगी, पूरा घड़ा भर के दूध देने लगी एक एक गाय। तो चंद्रहास की अवस्था जब 7 वर्ष की हुई तब उसने नाना प्रकार के अक्षर समुदायों पर भली बातें मन से विचार किया। उस समय उसे हरि ये दो ही अक्षर सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुए, अतः वह सदा उन्हीं का जप करने लगा। तब उसके वर्णमाला की शिक्षा देने वाले गुरु क्रुद्ध होकर उससे पूछने लगे। वो तो हरि के अलावा कोई शब्द ही नहीं बोलता चंद्रहास, तो उसके जो वर्णमाला सिखाने वाले जो गुरु थे वो क्रोधित हो गए। चंद्रहास, तू रात दिन हरि इन दो अक्षरों का ही उच्चारण करता रहता है, तो दूसरे वर्ण को क्यों नहीं पढ़ता? तो चंद्रहास ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तो आपका किंकर हूं, किंकर यानी दास। मैंने भगवान श्री कृष्ण में समस्त वर्ण समानमय सिद्ध कर लिया है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में ही सभी वर्ण समाये हुए हैं और वो मैंने उसको अच्छी तरह से समझ लिया, मैं उसको सिद्ध कर लिया है। अतएव हरि इन दोनों अक्षरों के उच्चारण के सिवा दूसरा अक्षर मेरे मुख से निकलता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो ये सुन के जो गुरुदेव थे उनके वो और कुपित हो गए और अपना फटा हुआ बांस का डंडा हाथ में लेकर कहने लगे, भो शिष्य, तू क का इत्यादि का उच्चारण कर जिससे पाठ बदलता रहे और तुझे पढ़ना आ जाए। तब चंद्रहास भयभीत सा होकर धीरे धीरे गुरुदेव से कहने लगा, गुरुजी, मैं कभी भी वैसा नहीं कह सकता क्योंकि अन्य वर्ण के उच्चारण के लिए मेरी जीभ लौटती ही नहीं। और अभी चंद्रहास एक बात बताते हैं, सभी वैष्णवों के दो श्लोक कंठस्थ करने चाहिए। क्या कह रहे हैं चंद्रहास? हरि नाम जपिष्यामि नान्य शास्त्रे प्रयोजनम यत्र नाम हरि नास्ति तानि शास्त्राणि किं प्रभो यस्मिन् शास्त्रे पुराणे च हरि नाम दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। बहुत सुंदर श्लोक है ये दो। मैं तो भगवान श्री हरि के नाम अथवा हरि इस नाम का ही जप करूंगा, मुझे अन्य शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभो, जिन शास्त्रों में भगवान श्री हरि का नाम नहीं है उन शास्त्रों को लेकर क्या करना है? क्योंकि जिस शास्त्र अथवा पुराण में श्री हरि के नाम का अंगंगा न दिख पड़े उस शास्त्रों को यदि स्वयं ब्रह्मा भी ब्रह्मा ही कहते हो तो भी उसे नहीं सुनना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही चंद्रहास ने। नारद जी कह रहे हैं अर्जुन से आगे, हे महाबाहु पार्थ, तुम विष्णु भक्त बालक चंद्रहास का आगे का चरित्र पुनः श्रवण करो, यह समस्त पातकों का समूल नाश करने वाला है। अर्थात चंद्रहास का ये अद्भुत चरित्र सुन के बड़े बड़े पातक भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े पाप महापाप समाप्त हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। तो इसी दौरान चंद्रहास के गुरु जी क्रुद्ध होकर राजा कुलिंद के भवन में चल दिए ये समाचार देने के लिए। तो वहां पहुंचकर उन्होंने कुलिंद से इस प्रकार कहा, राजन, आपके पुत्र के शरीर में किसी महान भूत का संचार हो गया है। बोले, भूत घुस गया उसके शरीर में जिसके कारण वह रात दिन हरी हरी यौ प्रलाप करता रहता है। राजेंद्र, मेरे पढ़ाने पर भी यह दुर्बुद्धि शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, अतः यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसे दंड देकर राह पर ले आ सकता हूं, इसमें संशय नहीं है। बोला, आप मुझे कुछ लिबर्टी दे, कुछ अवसर दे तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, उसकी बुद्धि ठिकाने ला देता हूं। तब कुलीन ने कहा, ब्राह्मण यह पुत्र मुझे बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, तब भला अब उसे दंड कैसे दिया जा सकता है। अच्छा, यदि वह इस प्रकार पिशाचग्रस्त होने से मूर्खी रह जाएगा तो भी वह राज्य का पालन तो करेगा ही, यह तो निश्चित ही है। तो मांगने से मना कर दिया कि नहीं, उसको कोई दंड नहीं देना है। आप गुरुजनों ने तो इस बालक के महान विचित्र चरित्र को अभी सुना ही नहीं है। यह बालक एकादशी का दिन आने पर न तो अन्न खाता है और न जल ही पीता है। तो कुलीन बता रहे हैं कि यह तो जन्म से ही एकादशी व्रत का पालन करता है, कभी उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं। तब इसके भोजन के बिना मैं ही कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकता हूं। मेरे ऐसे भक्त पुत्र की आप ऐसी पिशाचग्रस्तता दशा बतला रहे हैं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना शुद्ध वैष्णव जो है उसके शरीर में तो कभी पिशाच प्रवेश नहीं कर सकता है, उसके प्रभाव में आ ही नहीं सकता है पिशाच के प्रभाव में। इसलिए विप्रवर, अब आप अपने घर जाइए और चंद्रहास भी सुखपूर्वक विचरण करें। आठवें वर्ष में मैं इसका मेखला बंधन यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा, तब पश्चात यह वेदाभ्यास कर लेगा। तो इसके बाद ब्राह्मण जैसे आए थे गुरु उसके, वैसे ही लौट गए। और राजा कुलिंद अपने उस मन को आनंद देने वाले पुत्र चंद्रहास का गहल आलिंगन करके परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, मेरे इस विष्णु भक्त तथा कार्यदक्ष एकमात्र पुत्र ने मेरे राज्य एवं उसमें निवास करने वाली सारी प्रजाओं को पवित्र कर दिया। अन्य बहुत से कुपुत्रों के होने से क्या लाभ? बोले, बहुत सारे पुत्र हैं लेकिन वो वैष्णव नहीं है तो क्या लाभ, एक वैष्णव पुत्र काफी है। सर्पिणी के तो बहुत से पुत्र होते हैं किंतु वे मेढकों का भक्षण करने वाले ही होते हैं, परंतु मेरे इस पुत्र का चित्त सदा भगवान श्री हरि के चरणों के ध्यान में ही लीन रहता है। पूर्व जन्म में मैंने पंचांगी तापन आदि न जाने कौन सा ऐसा तप किया था जिसके फलस्वरूप मुझे विष्णु भक्त तथा प्रजाजन वल्लभ पुत्र प्राप्त हुआ है। तो ऐसा विष्णु भक्त पुत्र प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, कितने जन्मों का पुण्य होगा। तो नारद जी कह रहे, अर्जुन तद अनंतर आठवां वर्ष आने पर राजा कुलिंद ने चंद्रहास की मौंजी बंधन संबंधी समस्त क्रियाएं विधिवत संपन्न की। उसके बाद वेद मंत्र द्वारा अग्नि में आहुतियां डालकर कुलिंद ने अपने पुत्र के लिए षडंग सहित वेद पढ़ने का प्रबंध कर दिया और चंद्रहास अपने हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वेदाध्ययन करने लगे। तो षडंग है शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये छह वेदांग है। उनके साथ वेदों का अध्ययन करना चंद्रहास ने आरंभ किया और हमेशा चंद्रहास अपने हृदय में श्रीहरि का ही ध्यान करते थे, क्योंकि वेद से सर्वेर अहमे वो वेद, हम भगवत गीता से जानते हैं। तो संपूर्ण वेद की शिक्षा समाप्त करके वह कहने लगा कि सारे वेदों तथा स्मृति शास्त्र में जिन मेरे स्वामी हरि का गुणगान किया गया है वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे तो ऐसी कोई वस्तु दिखती ही नहीं जिसमें श्रीहरि व्याप्त न हो। इस प्रकार वेदांत को हृदयंगम करके चंद्रहास धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। उसने अपने हृदय रूपी मैदान में श्रीहरि को लक्ष्य बनाकर स्थापित कर लिया। फिर विचार करके सद्भक्ति रूपी धनुष पर सुदृढ़ सत्वगुण रूपी प्रत्यंचा चढ़ा दी और एकमात्र अपने चित्त को ही बाण बनाया। तत्पश्चात धनुष पर उस बाण का संधान करके अपने लक्ष्य यानी कि श्री कृष्ण पर बाण छोड़ने लगा। ऐसी सरल प्रक्रिया द्वारा भी उस बालक ने अपने लक्ष्यभूत श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो धनुर्वेद का अभ्यास भी करते थे, वो भी कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए, या एक अद्भुत तरीका बताया है कि वो किस प्रकार से अभ्यास करते थे धनुर्वेद का। तो बता रहे नारद अर्जुन से कि जो लोग इस प्रकार से उस लक्ष्य श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं उन्हें वो लक्ष्य ही पीड़ित करता रहता है, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति ना होने से वे दुखानों में गोते लगाते रहते हैं। नारद जी कहते, अर्जुन उस कुलिंद कुमार चंद्रहास के शरीर रूपी तर्क से स्वयं ही पांच बाण कौन से, शब्द रूप, रस, गंध और स्पर्श रूप बाण निकले और वे बाण एकीभूत होकर उसके लक्ष्यभूत श्री कृष्ण में जा घुसे। यह अत्यंत अद्भुत बात हुई। इस प्रकार चंद्रहास ने धनुर्वेद का अभ्यास किया। तत्पश्चात उसने अपने उन गुरुओं का भी सम्यक रूप से आदर सत्कार किया। फिर अश्व समूह तथा समस्त शत्रुगणों को वश में करके उनकी रक्षा की और उस देश पर अधिकार जमा लिया। तो एक बार कुंडल मंडित चंद्रहास घोड़े पर सवार हुआ और उसके लगाम खींचकर उसने अपने वश में किया। फिर अपने गुरुजनों से कहने लगा कि मुझे अपने धनुर्वेद की शिक्षा के विषय में कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को पाकर मनुष्य विमूढ़ कैसे रह सकता है।